सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, हम सब लोग मानव हैं, मानव होने के नाते साधक हैं और साधक के जीवन की सार्थकता इस बात में है कि मरने से पहले उसको सिद्धि मिल जाए, नहीं तो साधक होने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा ही हो जाएगा कि मैं विद्यार्थी तो हूँ और पढ़ती भी हूँ, परीक्षा भी देती हूँ और सब करते करते सारी जिंदगी बीत गई, कभी परीक्षा पास नहीं किया। ऐसा विद्यार्थी होना कोई अर्थ नहीं रखता है, ऐसे विद्यार्थी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। उसी प्रकार से बहुत गंभीरता से अपने संबंध में हम लोग विचार करें कि मानव हैं, साधक हैं, सत्संगी हैं, विचारक हैं, विश्वासी हैं, यह बहुत सी बातें, साधन युक्त मान्यताएं हम लोगों ने अपने लिए स्वीकार कर लिया। इसकी सार्थकता इस बात में है कि शरीर के नाश होने से पहले हम लोगों को जीवन मुक्ति मिल जाए, भगवत भक्ति मिल जाए। सुन करके किसी किसी भाई बहन को बहुत कठिन भी लगता होगा, यह कैसे हो सकता है कि जीवन मुक्ति मिल जाए, भगवत भक्ति मिल जाए। मैं कहती हूं कि अगर यह नहीं हो सकता है तो हम लोगों को अपने से पूछना चाहिए कि तब साधक की सूची में नाम क्यों लिखवाया। अगर भगवत भक्ति, जीवन मुक्ति अपने लिए संभव नहीं है तो सत्संग की गोष्ठी में बैठते किस लिए है। बात ऐसी है कि जिसने अपना नाम साधकों की सूची में लिखवाया, जिसने अपने को सत्संग में शामिल करना पसंद किया, उसको इस बात में बहुत दृढ़ आस्था रखनी चाहिए कि शरीर छूटने से पहले मैं जीवन मुक्त हो जाऊं, भगवत भक्त हो जाऊं, और यही संभव है। बाकी सब कुछ हो करके भी नहीं होने के समान है। इसका अर्थ क्या है? श्री महाराज जी ने एक बार बड़े मार्मिक शब्दों में यह कहा था कि अरे भाई देखो, हम लोग रोते रोते जन्मे हैं, अब रोते रोते मर जाएंगे, तो इतने दिन दुनिया में रह करके पृथ्वी से भार ढुवाया, वायुमंडल को गंदा किया, राष्ट्र से सुरक्षा ली, यह सब ऋण चढ़ाने का कोई फल निकला? गहराई से सोचो, जन्म क्यों हुआ, शरीर क्यों धारण करना पड़ा? क्योंकि शरीरधारी होने के राग का नाश नहीं हुआ था, क्रियाजनित सुख का राग नहीं मिटा था, माता पिता बनने का, संतान पैदा करने का राग नहीं मिटा था, धन कमाकर धनी मानी कहलाने का राग नहीं मिटा था, इसलिए जन्म लेना पड़ा। शरीर के मोह का नाश नहीं किया, धन के लोभ का नाश नहीं किया, सुख की वासनाओं का अंत नहीं किया, इसलिए जन्म लेना पड़ा। इन कारणों से विवश होकर जन्म लेना पड़ा, शरीर धारण करना पड़ा, अब अंत में ऐसी घड़ी आ गई कि शरीर का मोह भी नहीं गया, धन का लोभ भी नहीं गया, कुटुंबियों का राग भी नहीं गया, सुख की वासना भी नहीं मिटी और संसार छूट रहा है जी। ठीक है, तो जन्म लेने के समय जो दशा थी, मरने के समय फिर वही दशा है कि नहीं है? तो 50 वर्ष या 80 वर्ष इस दुनिया में जिंदा रहे तो जीने का फल क्या निकला? कोल्हू के बैल की भांति 24 घंटे भी चक्कर काटे तो रहे कहां, जहां के तहां। आप सोचिए, बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। संत जन ये बातें हम लोगों की जड़ता को तोड़ने के लिए कहते हैं। सुख भोग की आशा में विवेक के प्रकाश को ढक दिया, प्रकाश हम लोगों को राह दिखा रहा है, उसके ऊपर से अपने लोभ अपने मोह की जड़ता का पर्दा हम लोग डाल देते हैं। मानव जीवन जिसने दिया, उसने हर प्रकार की स्वाधीनता जो दी थी, उसके दिए हुए का क्या लाभ हमने उठाया? कोई लाभ नहीं निकला। हमारे लिए यह बहुत ही विचारणीय बात है कि जैसे बहुत से काम हमने किए थे, व्यक्तित्व का श्रृंगार किया था, समाज में थोड़ा सिर ऊंचा करके चलने का उपाय किया था, साधकों की सूची में नाम लिखवाना और किसी न किसी प्रकार की साधना में लग जाना और ऊंचे आसन पर बैठ करके सत्य की चर्चा कर लेना और वक्ता बनकर श्रोता को रिझा लेना, यह भी कहीं मेरे व्यक्तित्व का श्रृंगार बनकर न रह जाए, इसके लिए अपने को बहुत सावधान होना है। मैं पहले अपने ही को समझा लूं तो बहुत है। आप सब लोग अपने अपने को समझाने का अपना अपना ढंग निकालिएगा। संत कृपा से, भगवंत कृपा से, सत्संग की महिमा से मैं अपने ही को सिखा लूं तो बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। आप सोच करके देखिए, अच्छे कपड़े पहन लेना, हीरा मोती से सज लेना, महल बना लेना, इसके बल पर मेरे जीवन का मूल्य बढ़ता था। ईंट पत्थर मुझसे ज्यादा कीमती हो गया, संसार की जड़ जगत की वस्तुएं ज्यादा कीमती हो गईं। अगर इस प्रकार की भूल हम पहले करते थे तो यह भी हमारे लिए एक भूल ही होगी कि साधकों की सूची में नाम लिखवाकर और दूसरों की अपेक्षा अपने को कुछ विशेष समझने लग जाएं, तो यह भी भूल ही होगी। वक्ता हो चाहे श्रोता हो, मानव सेवा संघ में तो दोनों में कोई भेद नहीं माना जाता। वक्ता को ज्यादा सावधान रहना पड़ता है अगर उसको अपने अहम का अभिमान बढ़ गया तो श्रोता से बहुत नीचे गड्ढे में चला गया। बात क्या है, सावधान किस बात के लिए रहना है? यदि मैंने अपने को साधक कहा है, यदि मैंने अपने को सत्संगी कहा है, तो मुझको इस बात में दृढ़ आस्था रखनी पड़ेगी कि साधक और सत्संगी जो होता है उसको जीवन मुक्ति भगवत भक्ति वर्तमान में मिलती है। उपाय क्या करना होगा ये तो मैं पीछे बताऊंगी। पहले हम लोग इस बात पर तो दृढ़ता से खड़े हो जाएं कि सचमुच मैंने अपने को सत्संग में शामिल किया है तो जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति मुझको मिलनी ही चाहिए। मानव सेवा संघ मनुष्य को समय गंवाने के लिए कोई मौका देना नहीं चाहता। भाई जीवन है, अभी तो अपने को चारों ओर उजाला उजाला दिखाई दे रहा है, विवेक के प्रकाश में मार्ग दिखाई दे रहा है, समाज की उदारता से हम सब लोगों को यहाँ बैठ करके सांस लेने का अवसर मिल रहा है, राष्ट्र की उदारता से हम लोग सुरक्षित यहाँ बैठकर सत्य की चर्चा कर रहे हैं, भगवत कृपा से हृदय में इतनी मानवता शेष रह गई है कि परपीड़ा को देखें तो अपना सुख बांट सकें, अभी तो इतना उजाला है। अगर इसका दुरुपयोग हम नहीं कर लेंगे तो कल जड़ता छा जाएगी, अंधकार छा जाएगा, असमर्थता आ जाएगी, परिस्थिति बदल जाएगी, अवसर निकल जाएगा, तब क्या करोगे? तो बहुत सोचने की बात है। मानव सेवा संघ में किसी संप्रदाय की, किसी मत, किसी पंथ की चर्चा नहीं होती है, यह तो मानववाद है, मानव मात्र की बात है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं यह कहती हूँ कि आप संप्रदायों को बेकार समझिए, बेकार मत समझिए, लेकिन इसमें आपको खुली छूट है, पूरी स्वाधीनता है। जो संप्रदाय आपको पसंद हो सुई कीजिए, जो वो कहे कीजिए, लेकिन उसके साथ आपने मानवता के सिद्धांत को नहीं माना तो आपका व्यक्तिगत सत्य जो है वह आपका जीवन नहीं बन पाएगा। इसलिए मानव सेवा संघ की जरूरत है। कोई कोई कभी कभी प्रश्न करता था महाराज जी से कि महाराज जी दुनिया में तो बहुत प्रकार के संघ बने हुए हैं, एक ये और नया संघ आपने क्यों बनाया? तो श्री महाराज जी कहते कि भाई बहुत सारे बने हुए हैं, छोटी छोटी दीवारों में वर्गीकरण किए हुए सत्य असत्य के आधार पर अपना अपना आग्रह लेकर दूसरों के बीच में भेद की दीवार खड़ी की हुई है, यह तो सब भेदों से ऊपर उठाकर मानवता के स्तर पर मानव मात्र को एक करने का मंत्र है। अपने अपने मत का आदर अपने लिए करो, अपने अपने मत का अनुसरण करो और सब व्यक्तियों को उनके उनके मत के अनुसार चलने की स्वाधीनता दो। आपको आपके व्यक्तिगत सत्य का अनुसरण कराने में स्वाधीनता देने के लिए मानव सेवा संघ बनाया है, इतना यह एक व्यापक प्रणाली है। मानव सेवा संघ ऐसे कहता है कि अनुसरण करो तुम अपने मत का, अनुसरण करो तुम अपने विचार का, अपनी आंखों देखो, अपने पैरों चलो, दूसरों की आंखों से तुम देख नहीं सकोगे और दूसरों के पैरों से तुम चल नहीं सकोगे, इसलिए अपनी आंखों देखो, अपने पैरों चलो, अपने मत का अनुसरण करो, अपने विचार का अनुसरण करो, निज विवेक के प्रकाश में अपने को देखो, परंतु तुम जैसे अपने मत संप्रदाय में अपने को स्वाधीन मानते हो, वैसे दूसरों को भी उनके मत संप्रदाय विचार के अनुसार चलने दो। तो अनुसरणीय है अपना, आदरणीय है सबका, यह दर्शन की भिन्नता और जीवन की एकता का पाठ पढ़ाने वाला संघ है। इस प्रकार की विश्वव्यापी साधन प्रणाली है कि जिसके मानवता के सिद्धांतों को कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। मानव मात्र का यह सत्य है कि हम रोते रोते जन्मे हैं, और यदि आपने व्यक्तित्व के मोह का नाश नहीं किया, अभिमान का त्याग नहीं किया, प्राप्त सामर्थ्य से समाज की, माता पिता की सेवा नहीं की, विवेक के प्रकाश में शरीर और संसार से असंग नहीं हुए, हृदय की भावना के आधार पर प्रभु के प्रेमी नहीं हुए, अगर यह सब नहीं किया तो मरने के समय रोना पड़ेगा। यह तपश्चर्या, त्याग, सेवा, ईश्वर विश्वास क्या हिंदुओं के लिए है? सो नहीं है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिसने ममता और कामना का त्याग किया उसको शांति मिल गई। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिसने शरीर और संसार से संबंध विच्छेद किया उसको मुक्ति मिल गई। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति सहज विश्वास के आधार पर प्रभु को अपना माना तो उसको भक्ति मिल गई। इसलिए हम सब लोग आंखें खोलकर देखें, खुले मस्तिष्क से विचार करें, तो आपको ऐसा मालूम होगा, स्पष्ट विदित होगा कि छोटी छोटी सांप्रदायिक सीमाएं बांधकर मानव मानव के बीच में एक भेद की दीवार खड़ी हो जाती है। व्यक्तिगत सत्य के आग्रह से ही ऐसा होता है, नहीं तो मानव सेवा संघ ने यह कहा कि भाई व्यक्तिगत भिन्नता का तथ्य तो प्राकृतिक तथ्य है, यह तो इंडिविजुअल डिफरेंस का फैक्टर है, इसको संसार से मिटाया ही नहीं जा सकता। जो प्राकृतिक सत्य है, जो प्राकृतिक तथ्य है, उसको स्वीकार करके चलो। और आप सोचिए, मूल रूप से देखो तो मानव मात्र की समस्या एक ही है। क्या समस्या है? ममता और कामना जब तक रखोगे अशांति मिट नहीं सकती, ममता और कामना जब छोड़ दोगे तो शांति अवश्य मिल जाएगी। तो इस मौलिक तथ्य को स्वीकार करो। इस दृष्टि से समस्या हम लोगों की एक है, और समस्या का समाधान जब हो जाता है तो दिव्य चिन्मय जीवन का आनंद भी सबके लिए एक है। किसी भी संप्रदाय का संत भक्त बन गया हो, किसी भी विचार का, किसी भी देश का, किसी भी युग का साधक अपनी जीवन की पूर्णता को पहुंच गया तो योग बोध और प्रेम से संपन्न हो ही जाता है। जीवन की पूर्णता में सबको सब कुछ मिल जाता है। इस दृष्टि से मांग हमारी एक है और जीवन की पूर्णता में हम सब एक हैं। बीच में जो भेद दिखाई देता है, व्यक्ति व्यक्ति का अंतर दिखाई देता है, वह व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है। इसलिए व्यक्तिगत सत्य का अनुसरण करो, व्यक्तिगत सत्य के आधार पर आगे बढ़ो और तब जीवन की पूर्णता होगी और पूर्णता में वही मिलेगा जो सबके लिए सदा सदा से है। आप जब साधक होकर साधक की दृष्टि से जीवन पर विचार करेंगे, शरीर मात्र को प्रकृति की संपत्ति जानकर सोचना शुरू करेंगे, प्राणी मात्र को परमात्मा का विस्तार जानकर सोचना शुरू करेंगे, तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी। और मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि विवेक का प्रकाश लेकर चलो तो संसार बदल जाता है। एक दिन असाधन काल में व्यक्ति कहता है कि संसार में बड़ा राग द्वेष है, संसार में बड़ा संघर्ष है। अरे भाई, तुमको संघर्ष क्यों दिखाई देता है? संसार से कुछ लेना चाहते हो, इसलिए संघर्ष दिखाई देता है। और देना शुरू किया तो क्या मालूम होता है? संसार बड़ा प्रेमी है, संसार बड़ा सहयोग देता है। मानव सेवा संघ के नवयुवक कार्यकर्ता जो जीवन लगाकर समाज की सेवा करते हैं, वे कहते हैं कि भाई समाज तो बड़ा उदार है। मैं तो कहने भी नहीं पाता हूँ कि अमुक प्रकार की सेवा के लिए इतनी संपत्ति चाहिए। मेरे कहे बिना संपत्ति वाले अपने आप से आकर के दे जाते हैं कि इसको सेवा में लगा देना। तो सेवाभावी साधकों को समाज बड़ा उदार दिखाई देता है। और ज्ञानी जन जब अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो उनके आगे सृष्टि रहती ही नहीं है। आप सच मानिए, यह अहम रूपी अणु के अभिमान से ऊपर उठे हुए महापुरुषों का अनुभव है कि संसार लुप्त हो जाता है। सुख के भोग की आसक्ति के काल में संसार बड़ा आकर्षक है, बड़ा मीठा है, बड़ा लुभावना है, चित्त को लुभा लेता है, मन को खींच लेता है, बड़ा भारी पतन हो जाता है। यह सब अपनी ही दृष्टि का विकार है। और नहीं तो क्या होता है कि जिन्होंने शरीर से असंगता प्राप्त की नहीं, कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों शरीरों से तादात्म्य टूटा नहीं, कि दृष्टि का व्यापार लुप्त हो जाता है, कहीं कुछ नहीं। एक नित्य अखंड आनंद तत्व के सिवा कुछ नहीं रहता है। और कहीं आपने उस परम प्रेमास्पद को अपने हृदय का प्रेम भाव देकर उन्हें रस प्रदान करना पसंद किया तो आपकी आंखों के सामने उनकी मधुर लीला के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता है। तो ज्ञानी की दृष्टि में भी सृष्टि नहीं है और प्रेमी की दृष्टि में भी सृष्टि नहीं है। यदि आपने प्रभु से प्रेम का नाता जोड़ लिया आप ही का दिया हुआ प्रेम उस प्रेमास्पद की ओर से अनंत गुना अधिक होकर आ करके आपके रोम रोम को शांत और स्निग्ध और सरस बना रहा है। जब यह हो गया तब उसके बाद सारी सृष्टि में आपके प्रेमास्पद की मधुर लीला को छोड़कर और कुछ नहीं रहता। किसी भक्त ने कहा था, जित देखूं तित श्याम मई, श्याम ही श्याम, श्याम ही श्याम, प्रभु ही प्रभु, प्रभु ही प्रभु, प्रेम ही प्रेम, और कुछ है ही नहीं। यह हमारे आपके इसी जीवन का चमत्कार है। इस समय हम लोग जैसे हैं, थोड़ा सद्गुण, थोड़ा दुर्गुण, थोड़ी दुर्बलता, थोड़ी सामर्थ, थोड़ा विचार, थोड़ा भाव, थोड़ा विश्वास, थोड़ी भक्ति, थोड़ी आसक्ति, इस समय की हम लोगों की ये दशा है ना। इसी जीवन की यह महिमा है कि आप जब ज्ञान का अनुसरण करेंगे तो अपने आप में, अपने निज स्वरूप में, अखंड आनंद में आपका निवास हो जाएगा। आप जब प्रभु के प्रेमी हो जाएंगे तो आपका रोम रोम उस परम प्रेमास्पद के मधुर रस से थक जाएगा। तो स्वामी जी महाराज उस जीवन की चर्चा करते हुए एक उदाहरण बताया करते हैं। आप छके नैना छके अधर रहे मुस्काए, छकी दृष्टि जा पर पड़ी रोम रोम थक जाए। प्रभु के प्रेम से जो आप थक गया उसका क्या हाल होता है। आप छके सबसे पहले आप प्रभु के प्रेम से सरस हो जाइए, तो आप जब थक जाएंगे तो क्या होगा। आप छके नैना छके, आपकी दृष्टि में प्रीति का रस भर जाएगा। अधर रहे मुस्काए, आपकी मुखाकृति पर सदैव मुस्कान खिलती रहेगी। खिची खिची हुई आंखें उदास मुखमंडल यह दूसरों को देखने को नहीं मिलेगा। प्रभु का प्रेमी निर्भय होता है, प्रभु का प्रेमी आनंदमय होता है, प्रभु का प्रेमी रस से भरा होता है। और उसमें जब रस भर गया तो उसने जिस शरीर से कभी भी भूल से ही अपना कहा था, उसका जब अनित्य तत्व भी नित्य तत्व से चमक उठता है, मुखमंडल पर प्रसन्नता खिल रही है। आप छके नैना छके अधर रहे मुस्काए, छकी दृष्टि जा पर पड़े रोम रोम छक जाए। और ऐसे प्रभु प्रेम की सरसता से भरी हुई दृष्टि से आप जिसको देख लेंगे उसके हृदय का ताप भी तत्काल उसी समय शांत हो जाए। ऐसा जीवन हमारा आपका, सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का बन सकता है। इसी वर्तमान में बन सकता है, अवश्य बन सकता है। इस आशा को सजीव बनाना हमारा पहला पुरुषार्थ है और बाकी सब कुछ अपने आप होता रहेगा। अब शांत हो जाए।